ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों की जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे 6.5% पर बरकरार रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने आज न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के ताकीना वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह राजधानी वेलिंगटन पहुंची। न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो की उपस्थिति में वेलिंगटन के गवर्नमेंट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू गवर्नमेंट हाउस में न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधान सह विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बाद में वे पुकेहू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और गवर्नर जनरल द्वारा आयोजित राजकीय भोज में शामिल होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भू अवलोकन उपग्रह ईओएस के प्रक्षेपण के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी से कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने बताया कि 15 अगस्त को एसएसएलवी की तीसरी और अंतिम विकास उड़ान होगी। ये उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 9:17 पर छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मिशन का नाम SSLV-D3EOS-8 रखा गया है। इसका उद्देश्य अत्यधिक छोटे उपग्रहों के डिजाइन और विकास को प्रोत्साहन देना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत में कोविड महामारी के बाद घरेलू पर्यटन में तेजी आई है और पर्यटन उद्योग को पर्यटकों की बढ़ती संख्या के लिए खुद को विकसित करने की आवश्यकता है। श्री शेखावत ने कल श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित टूरिस्ट गाइड्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 25वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री शेखावत ने कहा कि महामारी की समाप्ति के बाद से पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या अधिक है, इसलिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों को कम लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देने की जरूरत है। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा कि करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। उन्होंने देश में 3-4 दिन में हालात सामान्य होने की संभावना व्यक्त की। इस बीच सेना ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि अगर किसी को भी तोड़फोड़, हिंसा और हत्या की धमकी मिले तो वे निकटतम सैन्य शिविर से संपर्क करें। ब्रिटेन और मिस्र ने अपनी एयरलाइनों को ईरान और लेबनान के हवाई क्षेत्र का उपयोग न करने का परामर्श जारी किया है। यह परामर्श आतंकी गुट हमास और हिजबुल्ला के कई आतंकियों की हत्या के कारण क्षेत्र में हिंसा की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई एयरलाइनें ईरान और लेबनान के हवाई क्षेत्र से बचने के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम में बदलाव कर रही हैं। इसके साथ ही इसराइल और लेबनन के लिए कई उड़ानें भी स्थगित कर दी गई हैं। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने तेल अवीव के लिए अपनी सभी उड़ानें 31 जुलाई से स्थगित कर रखी हैं। पेरिस ओलंपिक्स में आज रात मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपना खिताब बरकरार रखने उतरेंगे। वहीं पुरुष हॉकी टीम आज शाम कांस्य पदक के लिए स्पेन के साथ भिड़ेगी। कुश्ती में भारत के एकमात्र पुरुष पहलवान अमन सहरावत आज दोपहर बाद 57 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल स्पर्धा में भाग लेंगे। महिला पहलवान अंशु भी 57 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल स्पर्धा में मैदान में उतरेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में कल भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में महिला पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वर्ग में उनका वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण फ्री स्टाइल फाइनल स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।